थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुरानी नियम की दूसरी पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का नाम है निर्गमन। श्रोताओ, हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक के अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तुझको ही पाने की थी दिल में आस, तुझे जब से चाहा हुआ ये एहसास। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तू आया खुशी मिली मेरे मन को तू भाया, खुशी मिली मेरे मन में तू आया, खुशी मिली मेरे मन को तू भाया। ऐसी खिली मेरे जीवन की बात, मैं मानू तेरा ही है मुझ पर एहसान। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। अंधियारे पथ पर देखी किरण जो तुझको ही पाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रभु के वचन की संगति में बढ़ रहे हैं। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हमने मत्ती सुसमाचार का अध्ययन समाप्त किया, जिसमें हमने यीशु मसीह की मृत्यु, उसका दफनाया जाना और उसके तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और अपने शिष्यों पर प्रकट होना और उन्हें महान आदेश देना आदि विषयों को देखा था। आज हम अपने अध्ययन को पुराने नियम की दूसरी पुस्तक से आरंभ करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस पुस्तक के परिचय को देख लें। मित्रों, मूसा की इस दूसरी पुस्तक का नाम निर्गमन है और इसका लेखक भी मूसा ही है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश उत्पत्ति से आरंभ हुए बातों को ही आगे बढ़ाता है, यद्यपि इसमें 3.5 शताब्दी तक की गतिविधि है। उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, अब्राहम के वंश मिस्र में 400 साल बिताएंगे, और निर्गमन उसके 12 अध्याय उसके 40 पद में लिखा है कि 430 वर्ष तक। परंतु गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम इसे पढ़ते हैं, जो यह दृढ़ करता है कि यह अब्राहम की बुलाहट के समय से 430 वर्ष तक था, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा उस समय से यह 400 साल था। मित्रों, निर्गमन का मतलब होता है बाहर निकलना, और यह हमें लहू और शक्ति के द्वारा छुटकारे की कहानी बताती है। निर्गमन की पुस्तक का संदेश हमें इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 23 से 29 पद में मिलता है, जहां पर लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने स्याना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से फसा और लोहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मित्रों, अब हम यहाँ पर विषय वस्तु में देखते हैं शब्द जो निर्गमन की पुस्तक को खोलती या आरंभ करती है, वह एक संयोजन है और उसका सही और अच्छा अनुवाद अब से बढ़कर और है। निर्गमन की पुस्तक को उत्पत्ति का परिणाम या शेष कहा गया है। डॉक्टर जी कैंपबेल मॉर्गन ने इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन की पुस्तक में कुछ भी आरंभ नहीं हुआ है और न ही कुछ समाप्त हुआ है। मित्रों, उत्पत्ति उसके 46 अध्याय और उसके 27 पद में हमें बताया गया है कि मिस्र में याकूब के 70 लोग प्रवेश किए, और रूढ़िवादियों का मानना है कि मिस्र से प्रस्थान करते समय या निकलते समय 21 लाख लोग थे। यद्यपि तिथि के बारे में हमें निश्चित रूप से उस समय को कहना असंभव लगता है, परंतु ऐसा लगता है कि यूसुफ हिक्सोस या चरवाहों के राजा के होने के समय काल में मिस्र में आया। ये लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब से संबंधित थे। वास्तव में इसराइली लोग उनके मात्र एक मित्र थे, क्योंकि वे दोनों ही मिस्रों के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे, और अंत में स्थानीय मिस्री राजवंश के द्वारा वे वहां से निकाले गए, क्योंकि वे दूसरे देश अर्थात बाहर के लोगों के विरोधी थे, और इसी राजवंश से सताने वाला फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। मित्रों, मूसा निर्गमन की पुस्तक में विशेष रूप से इस बात को दर्शाता है कि वह पहली 5 पुस्तकों का लेखक है, जिसे पंचतंत्र या पेंटाट्यूक भी कहते हैं। ये 5 पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण है। निर्गमन की पुस्तक में मूसा के जीवन 3 बार 40 वर्षों के काल में विभाजित किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला 40 वर्ष फिरौन के राजमहल में जो मिस्र में है, दूसरा 40 वर्ष मिद्दान के निर्जन प्रदेश में, और तीसरा 40 वर्ष इसराइलियों के अगुए के रूप में जो निर्जन प्रदेश में दिए। मित्रों, मिस्र में मूसा का प्रशिक्षण स्पष्ट रूप से सूर्य के मंदिर में हुआ, लेकिन वह उसे परमेश्वर का अनुसरण करने और इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने की अगुवाई करने की तैयारी नहीं दे सकी। परमेश्वर ने उसे 40 वर्ष तक उसे निर्जन प्रदेश में प्रशिक्षित किया और प्रकट किया कि वह अकेले इसराइलियों को छुटकारा नहीं दिला सकता है। परमेश्वर ने मूसा को बीडी की उपाधि दी, जिसका अर्थ है बैक साइड ऑफ द डेसर्ट, अर्थात मरुभूमि के पीछे। मित्रों, इस बात पर ध्यान दें कि 40 वर्ष मूसा को निर्जन प्रदेश में प्रशिक्षित करने के बाद परमेश्वर ने उसे मिस्र देश में इसराइलियों को छुड़ाने के लिए भेज दिया। अब मूसा इसराइली अगुओं को एकत्र करके फिरौन के पास जाता है, परंतु फिरौन इसराइलियों को छोड़ने के लिए मना करता है। मिस्र बहुत से देवी देवताओं से भरा हुआ था, और उसके मना करने के कारण परमेश्वर और मिस्र के देवताओं के बीच में प्रतियोगिता का द्वार खुल गया। मिस्र मूर्ति पूजकों के द्वारा शासित था, वहां पर हजारों मंदिर और लाखों देवता थे। इस मूर्ति पूजा के पीछे शैतान का हाथ था, और मिस्र के धर्म में सामर्थ्य भी थी। हम 2 तिमुथियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद में पढ़ते हैं, और जैसे यनेश और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 2 पद में देखते हैं कि फिरौन ने पूछा, यहोवा कौन है कि कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना परिचय दिया और फिरौन परमेश्वर के साथ परिचित हुआ और उसे परमेश्वर के रूप में मान लिया। हम निर्गमन उसके 9 अध्याय और उसके 27 पद में पढ़ते हैं। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। आगे हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़ते हैं। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। मित्रों, इस श्रृंखला में हमारे लिए एक प्रश्न उठता है कि महामारी क्यों? वे मिस्र के देवताओं के साथ परमेश्वर के युद्ध थे। प्रत्येक महामारी मिस्र के विशेष देवता के विरोध में निर्देश किए गए थे। हम निर्गमन की पुस्तक के 12 अध्याय और 12 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों पर अपने को प्रकट करना चाहते हैं कि वही प्रभु हैं और मिस्र के किसी भी देवता से महान है और उसके पास उन्हें छुड़ाने का भी सामर्थ है। मित्रों, अब हम निर्गमन की पुस्तक में आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को अध्याय 1 से आरंभ करते हैं। तो आइए हम कुछ विशेष विषयों को देखें जो इस प्रकार हैं। मिस्र में इसराइल का होना, एक नया फिरौन, इसराइलियों की बंधुआई और सताव और दो औरतों की वीरता। निर्गमन के पहले कुछ पद उत्पत्ति के कुछ विवरण से जुड़े हुए हैं। जो लोग मिस्र को आए उनके नाम पहले लिखे गए और इस बीच के सालों को समाप्त करके उत्पत्ति के विवरण को निर्गमन 1:7 के पदों से आगे जारी रखा गया है। इस किताब का मुख्य पद है निर्गमन 20 अध्याय उसका 2, कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र में इसराइल, हम निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 1-6 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए हैं ये हैं, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकर, जुबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे 70 प्राणी थे और यूसुफ और उसके भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। मित्रों, निर्गमन उत्पत्ति की पुस्तक की शेष भाग है। यूसुफ की मृत्यु के साथ उत्पत्ति की पुस्तक का समापन होता है। तब हम निर्गमन उसके 1 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं कि यूसुफ उसके भाइयों और सारी पीढ़ियों के मरण के विषय में बतलाता है। 3.5 शतक तक इस प्रकार से बीत गए। और अब हम आगे देखते हैं मिस्र में बंधुआई। उत्पत्ति अध्याय 46 में परमेश्वर ने कहा कि इसराइल फैले और बढ़े और मिस्र की धरती पर एक महान राज्य बने। जैसे ही हम 7 में पहुंचते हैं तो यह पाते हैं कि यह भविष्यवाणी वास्तव में पूरी हुई। निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और इसराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। पद 8 यह दर्शाता है कि एक बड़ा बदलाव भी हुआ। 8 पद में लिखा है, मिस्र से एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। एक नया फिरौन मिस्र की राजगद्दी पर आया जिसने कभी यूसुफ के बारे में नहीं सुना था। संभवतः हिक्सोस या गडेरिये राजा को जो सिमाइट्स थे पदच्युत कराया गया और मिस्रियों के राजा जो भूतपूर्व राजवंश के थे फिर से राजगद्दी पर बैठे। नया राजा यूसुफ को नहीं जानता था और उसने न तो यूसुफ की तरफ और न ही उसके वंशज के लिए कृतज्ञता महसूस की। 8वें पद में बहुत सी आश्चर्यजनक और जबरदस्त पाठ सीखने को हमें मिलता है। मैं प्रायः सोचता हूं कि जो आज बच्चे के बीच में कार्य करते हैं उन तक पहुंचते हैं जिसमें उन्होंने विशेषता पाई है। उन्होंने इस पद को इस्तेमाल नहीं किया, इसका उपयोग करना चाहिए। लगातार परमेश्वर के वचन को हर नई पीढ़ी को सिखाने की जिम्मेदारी है। अगर हम बाइबल को पढ़ाने में अनदेखी करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को पूर्णतः भूल जाएंगे। एक बार मेरी मुलाकात एक कोका कोला कंपनी के प्रबंधक से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हर बोतल के कुछ प्रतिशत ही विज्ञापन में उपयोग होते हैं। मैंने उनसे मजाक ही मजाक में पूछा, आपके जैसे एक प्रसिद्ध कोका कंपनी के विज्ञापन की इतनी क्या जरूरत है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने एक बार उनकी कोका कोला कंपनी का विज्ञापन एक जगह पर 13 बार देखा और मेरे ख्याल से वह कुछ ज्यादा ही था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने आखिरी बार अरबक्कल नामक कॉफी के डब्बे को कब देखा। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि वह कॉफी ब्रांड मेरे बचपन में ही बहुत प्रसिद्ध था, पर मैंने बहुत सालों से उसे नहीं देखा है। मेरे पास उत्तर आया जो प्रबंधक ने मुझे बताया कि उस कंपनी को लगा कि उन्हें विज्ञापन देने और प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तब मिस्र में नया राजा राज्य करने लगा था जो यीशु को नहीं जानता था, और हमेशा ही एक नई पीढ़ी आती है जो प्रभु यीशु को नहीं जानती है। कुछ महीने पहले जब मुझे पता चला कि मेरे कुछ करीबी रिश्तेदारों को कष्ट और विपत्तियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वे नई पीढ़ी के थे और वे कष्ट और विपत्तियों में जीवन व्यतीत करना कैसा होता है नहीं जानते थे। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन किन कठिनाइयों और विपत्तियों में गुजारा है। इसलिए यह बात हमेशा ही जरूरी रही है कि हम अपनी नई पीढ़ी को यह बताएं कि हमारी पिछली पीढ़ियों के साथ क्या हुआ, और इसलिए वहां एक पीढ़ी आई जिन्होंने यूसुफ के बारे में कभी नहीं सुना था। एक ऐसा भी समय था जब यूसुफ एक जाना माना और पराक्रमी पुरुष था, और यहां तक कि उसका शरीर भी वहां से निकाला नहीं जा सकता था। मिस्र का नया राजा जो सत्ता में आया था उसका इसराइलियों के प्रति स्वभाव अच्छा नहीं था, जैसा कि उसके पिछले राजाओं ने किया। निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से वर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। मित्रों, उस समय यह संभावना थी कि इसराइल मिस्र के दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे। हालांकि फिरौन गुलाम चाहता था, उसकी समस्या का सबसे आसान हल यही था, वह इसराइलियों को आजाद कर दे। लेकिन इसराइलियों को आजाद करने के बजाय राजा ने निश्चय किया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए उस सांसारिक तरीका अपनाएगा। निर्गमन उसके 1 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। उस समय इसराइलियों से जबरदस्ती कड़ी मजदूरी कराई जाने लगी। इसराइलियों ने पिरामिड इसलिए नहीं बनाए कि वे इतने सालों तक अस्तित्व में थे, पर इसलिए कि उन्हें उन भंडार वाले नगरों को बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसराइलियों ने पितोर और रामसेस जैसे भंडार वाले नगरों को बनाया। उन्होंने नगरों को उन दिनों में ईंटों से बनाया, जिन ईंटों को उन्हें गुलामी के दौरान बनाने को मजबूर किया गया था। उनकी गुलामी की शुरुआत में इसराइलियों को ईंट बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मिस्र के राजा का सताव इसराइलियों पर बढ़ता गया, इसराइलियों को ईंटें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध खुद से करने के लिए कहा गया, और उसी समय उन पर पहले से ज्यादा ईंटें बनाने के लिए दबाव डाला जाने लगा। एक दिन मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक ईंट दिखाई जो रामसेस नगर से लाई गई थी। वह ईंट घास फूस से बनी हुई थी। बाइबल संबंधी लेख जो इसराइल का मिस्रियों के द्वारा बंधक बनाए जाने के बाइबल में लिखी गई बातों को कोई दलील या सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ ईंट यह प्रमाणित करता है कि यह लेख सही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसराइली मिस्र में बहुत कठिन और कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मिस्रियों ने इसराइलियों का जीवन कठिन से कठिन बना दिया था। निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, पर ज्यों ज्यों उनके दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब इसराइली मिस्र में अपना समय कठिनाई और विपत्ति में गुजारेंगे। उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय के 13 पद में लिखा है और जिसे हम देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान के तेरे वंश पराय देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्षों लो दुख देते रहेंगे। मित्रों, इस पद में तीन भविष्यवाणियां हैं। इसराइल प्राय देश में परदेशी होकर रहेंगे, वे वहां उनकी गुलामी करेंगे और वे वहां सताए जाएंगे। ये सारी भविष्यवाणियां निर्गमन की पहले अध्याय में और उसके पहले कुछ पदों में ही सत्य साबित हो जाती है। और मिस्रियों ने इसराइलियों को जितना ज्यादा सताया उतना ही ज्यादा वे बढ़ते और फैलते चले गए। हम निर्गमन की पुस्तक एक अध्याय उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती की भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम दो इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। मिस्रियों ने इसराइलियों से केवल गुलामी ही नहीं करवाई पर उनके साथ कठोर व्यवहार भी किया। इतने कठोर व्यवहार और अत्याचार के बावजूद परमेश्वर की आशीष उन पर बनी रही और उनकी संख्या बहुतायत से बढ़ने लगी। राजा ने गुलाम राष्ट्र को बढ़ते हुए देखा और दो इब्री दाइयों से इस समस्या का हल निकालने के लिए बात की। इन दोनों स्त्रियों के नामों का अर्थ पर ध्यान देना काफी दिलचस्प होगा। इसमें शिप्रा का अर्थ सुंदरता और पुआ का अर्थ वैभव है। क्या आपने कभी मिस्री महिला के बाहरी रूपरेखा वाले रूप चित्र को देखा है? यहाँ सौंदर्य और महिमा मिस्र के महिलाओं की विशेषता बतलाती है। ये महिलाएं ऊपरी तौर से मिस्र में उच्च कोटि का अधिकार रखती थी और बच्चों की पैदाइश के लिए कार्य करती थी, जो एक दाई के लिए जिम्मेदार था। निर्गमन एक अध्याय उसके 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। मित्रों, शैतान की ओर से एक कोशिश थी कि वह प्रभु यीशु मसीह तक चलने वाला या जाने वाला वंश को नष्ट कर दे। मसीह तक बढ़ती हुई अगली पीढ़ी को रोकने के लिए शैतान की कोशिशों का वर्णन बाइबल के पुराने नियम से नए नियम तक किया गया है। यहूदियों को नाश करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई और ये एक रोचक बात है कि यहूदियों के खिलाफ पक्षपात सारी दुनिया में फैल गया। यह बात स्वयं में मूलतः शैतानी है और इसलिए परमेश्वर के किसी भी जन का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। प्रायः ये लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जिनको परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है, वो ही सताने का काम करते हैं। आप में से कुछ लोग निस्संदेह यह सोच रहे होंगे कि ठीक है, अंधकारपूर्ण युगों में कलीसिया भी यहूदियों के विरोध थी। ये सच है, लेकिन ये अंधकारपूर्ण युग था और कलीसिया परमेश्वर के वचन से काफी दूर थी, अर्थात परमेश्वर के वचन को नहीं जानती थी और धर्म के अन्य कार्यों में उलझी थी। मेरे राय से या मेरे सोच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के वचन को पढ़े और यहूदियों के खिलाफ खड़ा हो जाए। दो महिलाओं की वीरता। मित्रों, जैसे शैतान ने इसराइल के बच्चों को नाश करने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। निर्गमन की पुस्तक उसके एक अध्याय उसके 17 पद से लेकर के 20 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इब्री बच्चों को मारने की कोशिश एक राजनैतिक कपटता का प्रयोग था जो सफल न हो सका। निर्गमन की पुस्तक एक अध्याय उसके 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी उसने उनके घर को बसाए रखा। उन महिलाओं को चुनाव करना था कि वे मिस्र के राजा की आज्ञा का पालन करें या परमेश्वर की आज्ञा का पालन। उन्होंने परमेश्वर का भय मानना सीखा था और उनकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के द्वारा देखी गई और परमेश्वर ने उन्हें इसका प्रतिफल भी दिया। परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ दोनों को इसराइलियों के बीच नाम और स्थान अर्थात पद प्रदान किया और वहां उनका अत्यंत आदर किया जाने लगा। हम निर्गमन की पुस्तक उसके एक अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। मित्रों, यदि ये आदेश माना जाता तो जल्द ही इसराइल नाश हो जाता। राजा के आदेश का उल्लंघन हुआ और निर्गमन के अगले अध्यायों में इसका साफ साफ वर्णन है। परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र के बंधुआई से छुटकारा दिलाने के लिए मूसा को खड़ा किया। छुटकारे के विषय में निर्गमन एक अच्छी पुस्तक है। यह हमें एक चित्र रूपी ढंग से प्रकाशित करती है कि कैसे आज हमारे परमेश्वर ने हमें पापों से, भौतिकता से और शैतान से छुटकारा प्रदान किया है ताकि हमें स्वर्ग के लिए बचा ले। प्रिय मित्र, आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आज मुझे और आपको यह जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु ने मुझे और आपको बचाने का उपाय कर दिया है। उसने शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है और आज वह जीवित है। यदि हम यीशु के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगते और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय करते हैं तो वह हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, जिस प्रकार उसने इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने की बात कही। वह हमें क्षमा कर स्वर्ग राज में प्रवेश करा सकते हैं। आज आप अवश्य ही कुछ क्षण अपने जीवन के बारे में विचार करें कि क्या आप आजाद हैं या मिस्र की गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। मित्रों, निर्णय आपको लेना है और यह समय आपके लिए है। प्रभु आपको एक सही निर्णय लेने में सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन